ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज है श्रीमद्भगवतम सातस्कंद बारहवाँ अध्याय और सातवां श्लोक।
वर्जयेत प्रमदा गाथाम् गृहस्थो बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरयन्त प्रियतेर्मनः।
वर्जयेत प्रमदा गाथाम्
इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरयन्त पीयतेर्मनः।
माता जी
वर्जयेत प्रमदा गाथाम् गृहस्थो बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरयन्त प्रियतेर्मनः। वर्जयेत त्याग दे प्रमदा गाथाम् स्त्रियों से बातें करना। अगृहस्थः जिसने गृहस्थ आश्रम नहीं स्वीकार किया, ब्रह्मचारी या सन्यासी। बृहद्व्रतः अटल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। इंद्रियाणि इंद्रियों को, प्रमाथिनि प्रायः अजेय, हरन्ति चुरा लेती हैं, अपि भी यतेः सन्यासी का, मनः मन, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। ब्रह्मचारी अथवा जिसने गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाया है, उसे स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से दृढ़ता पूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती हैं। तात्पर्य। ब्रह्मचार्य का अर्थ है विवाह न करने का व्रत धारण करना तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य बृहद व्रत रखना। ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्रियों से बातें करने या स्त्री एवं पुरुष की वार्ता वाले साहित्य को पढ़ने से बचना चाहिए। स्त्रियों की संगति पर पाबंदी का आदेश आध्यात्मिक जीवन का मूल सिद्धांत है। स्त्रियों से बातें करने या उनकी संगति करने का परामर्श किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। समग्र वैदिक प्रणाली मनुष्य को विषयी जीवन से बचने की शिक्षा देती है, जिससे वह क्रमशः ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यास की दिशा में आगे बढ़ता जाए और इस प्रकार भौतिक भोग का त्याग करें, जो इस भौतिक जगत के बंधन का मूल कारण है। बृहद व्रत शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने विवाह न करने का निश्चय किया हुआ है, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति जिसने यह व्रत लिया है कि वह आजीवन कामी जीवन में आसक्त नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम ज्ञान सिमरन्दस्य ज्ञानञ्जनाश्लाघ्य चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्रीचैतन्य मनोवृत्त साभिरामेण भूतले स्वयं रूपकदाम वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगणतं सहगणरघुनाथान्वितं तं सदैवं सद्वैतं सवधूतं परिणासहितं श्रीराधा कृष्णापदा सागरानलितं हे कृष्ण करुणा वंचा का पद जय श्री कृष्ण जी हरे कृष्ण भोजये प्रमद गाथम अग्रहस्तो बृहद वतः इंद्रियाणि प्रमादिनि अपि देमनः। सो इस भगवतम के सेक्शन में आप पढ़ते हो कि ब्रह्मचारी के क्या गुण होने चाहिए, गृहस्थ के क्या होने चाहिए, परमापसा और सया। वैदिक साहित्य से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि समाज का विभाजन चार वर्ण और चार आश्रम में होना चाहिए, और अगर समाज का विभाजन चार वर्ण और चार आश्रम में हो तो आप शांति की उम्मीद रख सकते हो। और चार वर्ण भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। सो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से एक प्रश्न पूछा था, आप सातवें स्कंद में बड़े गहराई के साथ प्रहलाद महाराज की शिक्षा प्राप्त करते हो और पढ़ते हो, कैसे प्रहलाद महाराज ने माता के घर में दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था और उसके पश्चात पांचवें अध्याय से युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा था। युधिष्ठिर महाराज ने क्या प्रश्न पूछा था, क्या बताइए कि शास्त्र के आधार पर गृहस्थ का क्या कर्तव्य होता है, ब्रह्मचारी का क्या और वानप्रस्थ का क्या और सन्यास का क्या। और युधिष्ठिर ने कहा हमें ये शिक्षा दीजिए शास्त्र पर आधारित, दूसरे शब्द में वो ज्ञान पा रहे थे पर शास्त्र पर आधारित, तो शास्त्र पर आधारित कार्य हो तो फिर आप सफलता की उम्मीद रख सकते। सो इस अध्याय में नारद मुनि उपदेश देने किस विषय का, ब्रह्मचारी जीवन का। यहाँ इस अध्याय में नारद मुनि क्या उपदेश दे रहे कि ब्रह्मचारी को क्या करना है, ब्रह्मचारी के क्या गुण होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी जी आश्रम बड़ा महत्वपूर्ण आश्रम है और जैसे कि अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो उम्मीद कर सकते हो बिल्डिंग गिरेगी नहीं, इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में अगर हमारा ब्रह्मचारी जीवन स्ट्रांग हो तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आप निर्भाव से भक्ति का पालन कर सकोगे। तो नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है, अब ये बताइए अलग वर्णन आश्रमों की क्या है जिम्मेदारी और जो ब्राह्मण हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि समाज को मार्गदर्शन दें, और जो असली ब्राह्मण हैं वो जो त्याग से भी हैं भगवान की खुशी है, जो असली ब्राह्मण हैं अपने पास उतना ही रखता है जितना आवश्यक हो। जैसे रामचंद्र जी के राज्य के समय रामचंद्र जी और सीता ने अपने सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया था और ब्राह्मणों ने कहा, पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया, फिर उन्होंने कहा आपने हमारी हर आवश्यकता पूरी की है, ये जो गहने इत्यादि दिए थे क्या क्या ब्राह्मणों ने वापस लौटा लिया। आज आप ये उम्मीद रख सकते हो आप ब्राह्मणों को चंदा दोगे वो आपका वापस कर देंगे। हमारे नाम ने पूछा मांगो कि कितनी ज़मीन चाहिए, मेरे ब्राह्मणों ने उसने स्वीकार किया जितना कि आवश्यक हो। जो ब्राह्मण हैं वो अपने लिए उतना ही रखते हैं जितना कि आवश्यक हो, और जो क्षत्रिय हैं ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ, क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य बुद्धिमान कार्य है और क्षत्रिय क्षत्रिय की तुलना की जाती है किसके साथ, बाबाओं के साथ। वो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य रहता है कि वो शासन करे, व्यापार करे, वो ये देखे कि बुरे व्यक्ति हैं और उनकी सुरक्षा हो। फिर ऐसा आश्रम में आप व्यापार कर सकते हो, आप नौकरी कर सकते हो, तो आपका भाव क्या होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं किसी की खुशी के लिए, मन की खुशी के लिए। ऐसा आश्रम के भी बड़े कड़क नियम हैं जिन्हें आप भगवता में पढ़ते हो कि युधिष्ठिर महाराज ने खास प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार गृहस्थ शास्त्र पर आधारित क्या नियम का पालन करें, और फिर हैं ब्रह्मचर्य। सो इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए वो आप पढ़ते हो श्रीमद्भगवद्गीता में। यहाँ इस अध्याय में जैसे हम कह रहे थे नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं उनको अपने आश्रम की सुरक्षा कैसे हो, तो ब्रह्मचारी हुए वो कैसे उन्हें क्या नियमों का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी भाव अच्छा है, तो ब्रह्मचारी रहने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे तो देखा जाए आध्यात्मिक जीवन निर्भर है किसके ऊपर, तपस्या के ऊपर। भगवत में कहा गया है तपस्या परम ज्योति भगवतम अधोक्षजम, परम भगवान जो हैं अधोक्षजा है। अधोक्षजा क्या अर्थ है, क्या अर्थ है जैसे समझना बड़ा मुश्किल है। तो परम भगवान जो हैं वो अधोक्ष हैं, पर तपस्या के माध्यम से मैंने आप समझ सकते हैं। तो तपस्या का संक्षेप में यह अर्थ है कि आप आध्यात्मिक जीवन के लिए जो प्रतिकूल कार्य है उसे आप चाहो। तो ब्रह्मचारी का जीवन आध्यात्मिक जीवन छोटी आयु में ही आरम्भ हो जाता है। राज महाराज कहते हैं कोमा अचर पर गयो भगवत में, हमें 5 साल की आयु से ये आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। तो अगर हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आज के श्लोक में क्या पढ़ते हो, एक ब्रह्मचारी है जो कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहता, और जिसने दृढ़ भाव से ये निर्णय किया है मैंने ब्रह्मचारी रहना है, उसे क्या करना चाहिए। उन्हें स्त्रियों की संगत और स्त्रियों से प्रजल्पा करने से बचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर शास्त्र में ये कहा गया है कि स्त्रियों की संगत नहीं करनी चाहिए, किसी से यहाँ अपमान कर रहे हैं नहीं। जैसे कि घी में आप तेल डालोगे तो जो दिया फ्लेम बढ़ेगा या छोटेगा, बढ़ेगा। इसीलिए आप नारद मुनि कह रहे हैं कैसे बचोगे, नारद मुनि कह रहे हैं कि हमेशा आपको ब्रह्मचारी को आध्यात्मिक कार्य में जुड़े रहना चाहिए और उन्हें उतना ही चर्चा करनी चाहिए, क्या है उतनी चर्चा करनी चाहिए जितना कि आवश्यक हो। जैसे कि हमारे भक्त सारे विश्व में प्रचार में जाते हैं, वो प्रचार में जाते हैं तो उन्हें औरतों को भी और पुरुषों को भी अप्रोच करना पड़ता है। ये नहीं हम ये नहीं कहते ओह माता जी आ रही है यहाँ यहाँ से हट हट हटो नहीं। तो यहाँ ना तो मुझे कहते उतनी चर्चा करो जितना कि आवश्यक हो भगवान के संदेश को आगे बचाने के लिए। ऐसे आप किसी स्त्री को देखते हो ये नहीं कि आप वहाँ से भाग जाओ, और उनसे चर्चा करो भगवान के भविष्य में उतना ही जितना कि आवश्यक हो उसे अधिक नहीं। ये नहीं कि प्रचार के बहाने हम बात करते ही रहे और फिर बहुत आकर्षण बढ़ जाता है। तो नारद मुनि कह रहे हैं स्त्रियों की संगत से दूर रहो, पर अगर तुम्हें स्त्रियों से बात करना है तो उतना ही बात करो जितना कि क्या है आवश्यक है, ओनली एज मच एज व्हाट इज नेसेसरी एंड कंपल्सरी। सो इस प्रकार ये माना जाएगा कि आप संगत से बचने का प्रयास करें। तो यहाँ दादा मुनि कह रहे हैं कि हमें औरतों से अधिक अधिक प्रजल्पा भी नहीं करना चाहिए। प्रजल्पा वैसे तो रूपक गोस्वामी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अत्याहार प्रजल्पा नहीं मांगा। किसी प्रकार का भी प्रजल्पा हो आपकी भक्ति को नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए रूपक गोस्वामी कहते हैं हमें प्रजल्पा से बचना चाहिए। तो प्रजल्पा से इसलिए बचते हैं कि प्रजल्पा जो है वहाँ शत्रु है। प्रजल्पा के कारण भक्ति नष्ट हो जाती है। रूपक गोस्वामी ने क्या कहा, अत्याहार प्रजल्पा ने मांग कहा, जनसंघ से लो ले भी भक्ति। तो जो जो कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहता है उसे त्याहरा इतना परिश्रम नहीं करना चाहिए कि उसे आध्यात्मिक कार्य के लिए समय नहीं मिलेगा। वो इतना परिश्रम नहीं करो और इतना खाओ भी मत, इतना खाओ नहीं कि आपको सुस्ती आ जाए या नींद आ जाए, उतना ही खाओ जितना कि आवश्यक हो। पापा जी कहते थे आयुर्वेदिक फॉर्मूला क्या है, जितनी भूख है पेट में उसका 50% खाओ। इज दैट राइट? आगे क्या, पानी 25% पानी से भरो और बाकी 25% हवा से भरो। अगर पापा जी कह रहे थे अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे हर प्रकार के रोग पीड़ा से बचोगे। तो प्रजल्पा से भक्ति नष्ट हो जाती है। सो हम स्त्रियों से चर्चा करते हैं उतना जो आवश्यक हो और प्रजल्पा से बचते हैं क्योंकि प्रजल्पा के द्वारा भक्ति कमजोर हो जाती है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारी इंद्रियाँ हैं इतनी बलवान हैं कि वो एक सन्यासी को भी विचलित कर सकती है और बड़ों को भी विचलित कर सकती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम सब बहुत ऊँचे खेल के सन्यासी हैं हमें माया विचलित नहीं कर सकती। भक्त जो है हमेशा विनम्र भाव से रहता है। एक समय पापा जी इंग्लैंड में भक्तिरंद मैनर मंदिर है इस्कॉन का, पापा जी भगवान का दर्शन लेकर कुछ शब्द कह रहे थे। भक्तों ने पापा से पूछा, पापा व्हाट वर यू स्पीकिंग, पापा सर आई वाज प्रेइंग टू द डीडीज एंड आई नेवर फॉल इन माया। पापा ने कहा कि मैं डीडी से ये पता कर रहा था कभी माया में नहीं आया। तो ये है संतों की विनम्रता और अगर उनके हृदय में भगवत प्रेम है तो भी वो क्या कहते हैं हमारे हृदय में बिल्कुल भगवत प्रेम नहीं है। सो चाहे कोई सन्यासी भी हो उसे ये नहीं समझना चाहिए। ये जो शास्त्र में उपदेश है सबके लिए है पर मेरे लिए नहीं है, ये है सबके लिए। सो यहाँ कहा जा रहा है कि हम सावधान नहीं रहेंगे तो जो सन्यासी हैं वो भी विचलित हो जाते हैं। विश्वामित्र मुनि भगवान का चिंतन कर रहे थे और कैसे आकर्षित हो गए। तो इसलिए शास्त्र द्वारा शिक्षा मिलती है कैसे आप बच सकते हो। इस प्रकार जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं उन्हें मन के द्वारा क्या करना चाहिए, मन के द्वारा सदा आध्यात्मिक विषय का चिंतन होना चाहिए। मन मना भावा मत भक्तो मध्या जी माम, मन के द्वारा क्या करो, मन के द्वारा मेरा चिंतन करो, मन के द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरे लीलाओं का चिंतन करो। दूसरे शब्दों में मन को जोड़ो इसमें आध्यात्मिक कार्य में। अगर मन जुड़ेगा जुड़ा रहेगा ध्यान में कार्य में वहाँ बच सकूँगा। श्रीमद भागवत के 9वें स्कंद में आप सब बड़े मुनि की कथा पढ़ते हो, आप सुबोणी मुनि का नाम सुना है? सुबोणी मुनि बहुत ऊंचे कोटि के योगी थे, बहुत ऊंचे कोटि के, उन्हें उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो पानी के नीचे जो सब में रीन होता है, जो पानी के नीचे रहता है, और बड़ी मुनि बिल्कुल नीचे वो थे, वो क्या कर रहे थे, वो भगवान का चिंतन कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा एक मछली, दो मछलियाँ भू गिलास में जुड़ी हैं, उनका मन विचलित हो गया, उनके मन के द्वारा वो सोचने लगे, ओ इसमें तो बड़ा आनंद है, मैं कीड़े मूर्ख था, मैं पानी के नीचे जो चिंतन करा, उनके मन में ये भाव आ गया कि ये जो भोग विलास है तैयारी, इसमें बड़ा आनंद है। तो उसने अपना चिंतन त्याग कर वो गया कहाँ, राजा के महल में। राजा की 50 बेटियाँ थीं, वो 3 बेटे थे, तो वो चले गया सीधा, कहाँ वो चले गया सीधा राजा के महल में। उसने कहा राजा से, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी 50 बेटियों में से एक बेटी का विवाह कराओ मेरे साथ। तो राजा ने देखा ये तो जंगली जैसे दिख रहा है, लंबे बाल, लंबे नाखून, लंबा चीज, फटे हुए कपड़े। राजा ने कहा मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे जंगली से नहीं कराऊंगा। उसने बड़े मीठे रूप से कहा, मेरी बेटियाँ स्वतंत्र हैं, वो खुद चुन सकती हैं जो पति चाहिए, अपने बात करना है तो डायरेक्टली जाके वो आप बात करो। सो सुबह मुनि बहुत ऊँचे उठे की मुनि थे, वो समझ गए कि क्यों राजा ने ऐसे कहा, वो समझ गए क्या कि क्योंकि वो अंडर वाटर योगी चिंतन कर रहा था भगवान का, तो उसने अपने शरीर के लिए शरीर के विषय में कुछ नहीं सोचा, लेकिन ये परवाने की कि मैं अच्छा देखता हूँ बुरा देखता हूँ, कि वो तो चिंतन कर रहा था हाँ पानी के अंडरग्राउंड। तो सुबह मुनि ने कहा अब मैं अपने योगिक सिद्धियों के द्वारा और मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, सुबाई मुनि मंत्रों के उच्चारण में बहुत एक्सपर्ट थे, उनकी कोई तुलना नहीं थी, और तो उसने कहा मैं अब ऐसे मंत्रों का उच्चारण करूँगा इतने ध्यान से कि कोई भी मुझे इनकार नहीं करेगा किसी चीज़ की। सुबाई मुनि ने अपने मंत्रों के उच्चारण से बहुत खूबसूरत महल बना लिया, बहुत खूबसूरत महल, 50 महल, एक महल एक बेटी के लिए, और उनका चेहरा बिल्कुल सुंदर हो गया और अच्छी कोठी। तो सुबह मुनि फिर गया राजा के इस महल में, सुबह मुनि ने देखा कि उसके जो महल थे बन गए थे बहुत खूबसूरत थे, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता था। सुबह मुनि ने जब इतना सुंदर महल प्रकट किया, सारी बहनों में झगड़ा हो गया, सारी बहनों में झगड़ा क्यों हुआ, हर बहन ने कहा मैंने इसे पहले चुना था, दूसरी बहन के ये मैंने चुना था, और सुभाष मुनि ने 50 भाई बहनों से विवाह कर लिया, उन्हें खुश रखेंगे। थोड़ी देर के बाद सुभाष मुनि को अनुभव हुआ कि चाहे उसके पास कितनी भी सुविधा प्राप्त हो गई है, उसकी इंद्रियां जो हैं कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। और फिर सुभाष मुनि ने कहा वापस जाता हूँ चिंतन करने के लिए, वापस आके आए चिंतन करने के लिए। और जो पत्नियाँ थीं उनके मन में भी त्याग का भावना आ गई थी, उन्होंने कहा कि जब हमारे पति तपस्या उठाने जाएंगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे। तो फिर सब जंगल में आए वहाँ का चिंतन करने के लिए। तो इस कथा द्वारा आप ये सुभाष मुनि को क्यों अपना चिंतन छोड़ना पड़ा इस विषय में कहा है शास्त्र में, उन्हें एक अपराध किया था। क्या था उनका अपराध? उन्होंने रोक दिया था गुरुदा को क्या मछली खाने से, जैसे आप लोग सब्जी खाते हो, तो गुरुदा के लिए मछली खाना पाप नहीं है, ये इनकी खुराक है। पर मैं सुभाष मुनि ने क्या क्या रोक दिया, वो मछली को खाने नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें श्राप लगी थी और उन्हें अपना आध्यात्मिक चिंतन छोड़ना पड़ा। और फिर कई सालों के बाद वापस वो जुड़े भगवान के चिंतन में। तो ऐसे एक शिक्षा ये भी मिलती है हमें, बचना चाहिए। किसे बचना चाहिए? वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध का बड़ा भयंकर परिणाम होता है, इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे, श्रीवास आंगन में रोज कई घंटों के लिए लगातार कीर्तन करते थे और अंदर आने की सुविधा केवल उनके प्रिय भक्तों को प्राप्त हुई थी। तो एक भक्त था, उसने कहा कि श्रीवास को बहुत आदर मिल रहा है, मुझे उसकी बेइज्जती करने लगा। तो उन्होंने क्या किया, जो सामान दुर्गा देवी की पूजा में लगता है, शराब मांस वगैरह, वो रख दिया कहाँ? श्रीवास के दरवाजे के आगे। जब श्रीवास ने कमरा खोला अगले दिन सुबह, उन्हें देखा ये सब शराब ये सब, उन्होंने कहा पड़ोसी आओ देखो मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था, मैं हूँ क्या, मैं हूँ दुर्गा का उपासक। क्या परिणाम हुआ? इससे बहुत घेरे खोड़ की बीमारी हो गई और वो तरस से गया और उन्हें महाप्रभु से माफ़ी मांगी। महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, वह तरस से गया। अंत में जाकर श्रीवास ने उन्हें माफ़ किया। तो वैष्णव अपराध के द्वारा हमें भक्ति नष्ट हो जाती है, इसके लिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष से हमें बचना चाहिए। और कैसे बचेंगे? प्रयास करने से। हर क्षेत्र में प्रयास करो तो सफलता मिलती है। मान लो आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? अच्छी जगह नौकरी है, मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपराध नहीं करें और वैष्णव के गुणों को देखना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें अभक्त की संगत से दूर रहना चाहिए। वो जो ब्रह्मचारी है उसे मन का बड़े खास तरीके से उपयोग करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसे मन के द्वारा क्या करना चाहिए, मन मना भावा मन बतो, मेरा भक्त बनाओ, मेरा चिंतन करो। तो आप कहोगे किस विषय का चिंतन करें, बताए भगवान की अद्भुत लीलाएं, भगवान का उपदेश, भगवान के आचार्य भगवान की मूर्ति, भगवान की अनेक लीलाएं, हजारों लीलाएं हैं भगवान के शास्त्र में, उनका चिंतन करो। और अगर हमारा मन रहेगा स्थिर धार्मिक कार्य में, फिर आप बचोगे अपराधों से, फिर आप बचोगे अपराधों से। तो हमें मन का उपयोग करना चाहिए इसके लिए, भगवान की सेवा में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें औरतों से उतनी चर्चा करनी चाहिए जितना कि आवश्यक हो, उससे ज़्यादा नहीं। और इंद्रियाँ जो है इतनी बलवान है कि संतों की भी चिंतन को तोड़ देती है। इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास खास शक्ति है, इसके द्वारा हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि हम पढ़ते हो हमें साधु संगत से बचना चाहिए, साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए, और स्त्रियों की संगत से स्त्रियों के विषय में चर्चा करना, वो बहुत एक इच्छाओं को रखना, इसके द्वारा क्या होता है उनका भक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। वो इसके लिए भगवान अनेक श्लोकों में क्या कह रहे हैं, थिंक अमी भावनाउंड में, थिंक अमी भावनाउंड में। तो ब्रह्मचारी को उतना ही समय काटना चाहिए स्त्री के साथ जितना आवश्यक हो, किस लिए, उन्हें भगवान का उपदेश देने के लिए। और जो भक्त है उसे इज्जत सबको करता है, माता जी को भी इज्जत करता है, पर वो जानता है कि जिस प्रकार मक्खन पिघल जाता है उसी प्रकार अगर हम श्री संगत में रहेंगे फिर ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना कठिन हो जाएगा। तो शास्त्र में ज्ञान दिया गया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अगर आप ब्रह्मचारी रहना चाहते हो बड़ी अच्छी बात है, फिर हमें जो अनेक उपदेश है उसका भी लाभ उठाना चाहिए। और कभी कभी भक्त कहते हैं वो मेरे तो ये असंभव है, कठिन है असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने भक्ति योग का जो मार्ग दिया है उसके नियमों के पालन से हम हमारे मन और इंद्रियों को वश में ला सकते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, देवेश गुणमाई माया विरोध है, इस माया का विरोध करना बहुत ही कठिन है। तो आप कहोगे अगर कठिन है तो हम क्या कर रहे हैं, तो भगवान आगे कहते हैं मामे मामे पपदन से साफ तरह दे, जो मेरे शरीर में आएगा वो इंद्रियों को वश में ला सकते हैं। तो इस अध्याय में नारद मुनि ब्रह्मचर्यों का उपदेश दे रहे हैं, गृहस्थों का उपदेश भी इसमें है। भगवतम के द्वारा अब हर प्रश्न का भगवतम के द्वारा हर प्रश्न का उत्तर आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए न सपरेश उपदेश नित्य भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है, हमें नियमित रूप से भगवतम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोज हम सुनेंगे ज्ञान को क्या लाभ होगा, फिर कि मेहनत पूर्ण हो जाएगी। तो संक्षेप में आज के श्लोक में नारद मुनि आगे शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचारी बनना रहना चाहते हो और आप स्त्रियों की इसे पर जलपा करते हो और गंदे विचारों को में जुड़ते हो, फिर आप ब्रह्मचारी आश्रम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकोगे। अगर हम ये नियमों का पालन करें फिर आप प्राप्त कर सकोगे। प्रभुपाद जी कहते थे तुम एक कदम लो कृष्ण की तरफ, कृष्ण को टेक 10 स्टेप्स रोक लो। जब आप प्रयास करते हो तो भगवान भी आपका सहयोग देते हैं। तो ब्रह्मचारियों को इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और ब्रह्मचारी जीवन अगर बिताओगे प्रचार के कार्य में ज़्यादा सरलता से जुड़ सकोगे और आप भक्तियों के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे। और महाराज नारद मुनि भी ऐसा जीवन के बारे में भी कहें वानप्रस्थ के भी संन्यास में, अब दूसरे शब्द में हर वर्णन आश्रम का क्या योग्यता होनी चाहिए वो आप यहाँ भगवता में प्राप्त करते हो। श्रीमद् भगवता में हर विषय का ज्ञान है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण। नहीं क्योंकि यहाँ प्रसाद के आते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न? हाँ नो क्वेश्चन। हाँ पूछिए।
हरे कृष्णा महाराज, शिला प्रभुपाद की जय। महाराज, गृहस्थ आश्रम के सन्यासी बनने का जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया तो इस मामले में ब्रह्मचारी और गृहस्थ बराबर ही है? चैतन्य महाप्रभु ने ये संदेश दिया कि गृहस्थ आश्रम के सन्यासी बनो भक्तों के लिए, तो इस मामले में ग्रस्त भी ब्रह्मचारी और सन्यासी की तरह ही, उनका जीवन भी
जो गंभीर गृहस्थ है वो सन्यास ब्रह्मचारी आश्रम में भी त्याग का जीवन बिताते हैं। ठीक है, आपने ये नहीं कि अगर आप गृहस्थ हो तो आपको पशु जैसे रहना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में भी आप त्याग का जीवन बिता सकते हो। और ये त्याग का जीवन है ये आवश्यक है अगर आप आध्यात्मिक परिवर्तन करना चाहते हो, चाहे किसी आश्रम में भी हो। ओके
हरे कृष्णा महाराज।
पूछिए।
महाराज मेरा प्रश्न जो इससे संबंधित नहीं है, मेरा खुद से संबंधित है। कई बार कहते हैं हमें प्रेमा भक्ति करने से अपने शरीर से जो है
या।
तो मैं आपसे कोई 6 महीने पहले मिला था आपसे, तो मैंने ये कहा था कि मेरे को जो है ये मंगल आरती मेरे को गाने का चांस नहीं दिया जाता, तो आपने कहा ये प्रभु जी से बैठे हैं तो इन्होंने मेरे को एक बार चांस दिया, तो मैंने मंगल आरती गाई। तो यहाँ तीर्थपति राजविद्या प्रभु बैठे हैं, बाकी और ही भक्त बैठे हैं, तो उन लोगों ने मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट किया कि आपने आरती बहुत अच्छी आई है। इसके बाद भी सार्वभौम प्रभु है ना जो यहाँ लेक्चर देते हैं, उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके बाद मेरे को चांस नहीं दिया गया मेरे को। ये मैं समझना चाहता हूँ कि ये ऐसा मेरे साथ व्यवहार क्यों है।
असल में आपको भूलना नहीं चाहिए जैसे आपकी इच्छा है, भाई बैठो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे दूसरे भी लाइन में खड़े हैं। ये वृंदावन मंदिर में बहुत से भक्त हैं और सब लाइन में खड़े हो रहे हैं। कभी कभी थोड़ा वेट करना पड़ता है. ओके
हरे कृष्ण महाराज. मां जैसे आप बता रहे थे कि ब्रह्मचारी को स्त्रियों से बातचीत नहीं करना चाहिए, लेकिन सेवा के लिए अगर जरूरी होता है तो वो करें, पर महाराज ऐसा लगता है सेवा के लिए जब वो बातचीत करते हैं उसी के अंदर फिर वो लूप होल चालू हो जाता है. बातचीत करते करते थोड़ा सा फिर वो चुस्की भी लेना स्टार्ट करते हैं, वहीं से ही वो मुझे लगता है कि या तो वही एक चीज होता है जहां वो फिसल जाते हैं. मार
तो कई जो बहुत पक्के ब्रह्मचारी हैं वो हमने उनको बचा भी रहे हैं, ये नहीं कि हर व्यक्ति डूब जाता है. ओके मेरे को खुशहाल ना. हरे कृष्णा.